तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बयाबान ही में मरते। खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए और नून का बेटा यशु और यूफना का बेटा कालिद, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फर्क इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है। उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, तो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावन का जलाल नुमाया हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तोहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मेराज से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोर आवर हो। मूसा ने खुदावन से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोर बाजू से निकाल ले आया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावन है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू ऐ खुदावन सरी तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है और तू दिन को अबर के सुतून में और रात को आग के सुतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावन इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने इनको बयाबान में हलाक कर दिया। तो खुदावन की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर है कि खुदावन कहर करने में धीमा और शक्कत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुस्तक देता है। तो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है अब भी मुआफ कर दे। खुदावन ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक मुआफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावन के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौतों के जो मैंने मिस्र में और इस बयाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिद की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊँगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालिकी और केनानी बसे हुए हैं। तो कल तुम घूम फिर कर उस रास्ता से जो बहरे कुलज़म को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूँगा। तुम्हारी लाशें इसी बयाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायतें करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा जिफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यीशु के और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। और जिस मूल को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी सनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल न जाए। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ कि मैं इस पूरी खबीस गुरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुतफिक है कतई ऐसा ही करूँगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यही मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौट कर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमात मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, तो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावन के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे उनमें से नून का बेटा यीशु और यूफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कही। तब वो लोग जार जार रोए और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहां जाएंगे क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्म उदूली करते हो? इससे कोई फायदा ना होगा, ऊपर मत चढ़ो क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है, ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालिकी और किनानी लोग हैं, तो तुम तलवार से मारे जाओगे क्योंकि खुदावन से तुम बरगश्ता हो गए हो, इसीलिए खुदावन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए। पर खुदावन के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालिकी और किनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और तुरमा तक उनको मारते चले आए।